نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کسی صاحب کی ایک تجویز ہے، روحانیت کے موضوع پر جو لیکچر ایک تسلسل سے چل رہے تھے، وہ ای میل کا جواب دینے سے وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے، تو وہ لیکچر دوسری طرح جاری کر دیے جائیں اور ای میلز کے لیے وقت علیحدہ سے مختص کر دیا جائے. تجویز بہت اچھی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی اس پہ عمل کر کے، لیکن صاحبان ایک مسئلہ ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. درس و تدریس یا دعا میرا فل ٹائم مشغلہ نہیں ہے، مجھے اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے لیے روزی کے لیے جدوجہد کرنا ہوتی ہے، اور میں ملازمت کرتا ہوں باقاعدہ طور پر. میری ملازمت در حقیقت کراچی میں ہے، تو صرف یہ دعا کے سلسلے میں میں ہر ہفتے کراچی سے فلائی کر کے آتا ہوں اور پھر واپس چلا جاتا ہوں ویکینڈ گزار کے. چونکہ کراچی میں نوکری کرتا ہوں، فیملی میری لاہور میں ہے، تو مجھے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. پھر بہت سے اصحاب ایسے ہیں جو یہاں آنا پسند نہیں کرتے، ان کی اپنی وجوہات ہوں گی یقیناً، تو وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جہاں میری رہائش ہے وہ وہیں تشریف لائیں گے. تو نتیجے میں جو سیٹرڈے اور سنڈے کو میرے پاس 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس میل ملاقات میں گزر جاتا ہے. میرے ذاتی معاملات، میری فیملی کے معاملات، میرے بچے سبھی بہت شدت سے نگلیکٹ ہوتے ہیں، اور نہ صرف دنیاوی طور پہ یہ چیز بری ہے، بلکہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اس کے لیے مجھ سے روز قیامت بڑی سختی سے باز پرس ہو جائے گی کہ میں نفلی عبادات کے لیے اپنے فرض کو بھولتا رہا. تو پھر اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور ان قیامت کے روز پڑنے والے چابک جو ہیں ان سے بچنے کے لیے میں اپنا نیند کا سارا ٹائم اپنی فیملی پہ صرف کر دیتا ہوں. تو یہ وقت کی تقسیم اس لیے نہیں میں نے عرض کی کہ میں آپ کو یہ احساس دلا دوں کہ مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی نیند کے جو 3.5 گھنٹے تھے اسے بھی کم کر کے اب 2 گھنٹے پہ لے آیا ہوں، اور 2 گھنٹے سے کم 24 گھنٹے میں سونا میرے لیے شاید ممکن نہ ہو. اگر آپ حضرات دعا فرمائیں تو شاید آپ کی دعا کی برکت سے پروردگار مجھے یہ ہمت عطا کر دے کہ میں ہفتے میں 2 گھنٹے سو لیا کروں، باقی پھر یہ مزید اس کام کے لیے کوئی وقت دینا میرے لیے قطعی طور پر ناممکن ہے، کیونکہ ہے نہیں وقت اب کہیں سوائے ان 2 گھنٹوں کے جو میری نیند ہے اس وقت. میں نے کوشش کی کہ میں نہ سوؤں، جیسے درمیان میں ہفتے میں 1-2 بار میں نے کیا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک رات سو لوں، ایک رات نہ سوؤں 2 گھنٹے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پھر کام چل نہیں پایا مجھ سے. میں کوشش تو کر ڈالی تھی درمیان میں نے، وہ ممکن نہیں ہوتا میرے لیے. ای میلز کا جواب دینے کے لیے علیحدہ ٹائم مختص کرنا دشوار ہوگا. پھر ای میل کے ذریعے دعائیں، وہ تقریباً मेरी जो पर्सनल ईमेल है वो और वेबसाइट पर दुआ का जो सेक्शन है, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो रोजाना तकरीबन 60-70 ईमेल हो जाती है, उनका भी जवाब देना होता है मुझे। तो ये सब मिला जुला के इस तरह का काम है कि 24 घंटे में ही शायद 36 घंटे का काम हो गया। आप वरना मैं जरूर कर देता, तजवीज आपकी अच्छी थी, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होता, बशर्ते कि कहीं वक्त मयसर आ जाए। जो मैं यहाँ आने में लेट होता हूँ, मैंने 12 इनडायरेक्ट अल्फाज में यही अर्ज किया था, वहां सुबह 8 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं मेरी रिहाइश पर, तो उन्हें निमटाते निमटाते मुझे अक्सर देर हो जाती है। किसी साहब ने एक सवाल किया है कि इंसानी जिंदगी में जमीर की क्या अहमियत है। गालबन गुज़श्ता इतवार ही जिक्र हो रहा था कि रब ताला ने हर चीज अपनी जिद के साथ पैदा की है, जोड़े की सूरत में पैदा की, जो भी आपके लिए अच्छाई है तो बुराई मौजूद है, नेकी है तो बदी है, खुशहाली है तो मुफलसी है, तंदुरुस्ती और बीमारी है। ये दोनों इस तरह की जितने भी जोड़े हैं ये एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट हैं। अब आप इसे किसी नाम से पुकार लीजिए, दिन और रात है, सर्दी और गर्मी है, खिजां और बहार है, ये सब 180 डिग्री अपोजिट हैं एक दूसरे के। इंसान के अंदर जैसे मैंने अर्ज किया था कि एक चीज है नफ्स, ये ज्यादातर इसकी ख्वाहिशात वो हैं जो उस तरफ ले जाती हैं जो ममनुआ इलाके हैं मुसलमानों के लिए, जो डू नॉट एरियाज हैं, डू नॉट के। हमारे नफ्स की ख्वाहिशात आमतौर पर उसी से मुताल्लिक होती हैं, तो इसलिए जो साहिब इल्म है वो सबसे पहला वार अपने नफ्स पर करते हैं। इसको बैलेंस किया है रब ताला ने, इंसान के अंदर जमीर को रख के, कि जहां नफ्स हमें उभारता है कि बेहतर खाना खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है, हम किसी की चोरी कर लें, किसी की जेब काट लें, वहीं फौरन हमारा जमीर हमें लानतान करता है और रोकता है कि क्या कर रहे हो, ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है, ये मत करो। नफ्स हमें इंतकाम पर उभारता है कि इस शख्स ने मेरे बेटे को कत्ल किया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जमीर फौरन अंदर से आवाज देता है कि अगर तुमने कत्ल का बदला कत्ल से लिया तो कौन सा कमाल किया, बड़ापन तो ये है कि इसे खुशदिली से माफ कर दो। तो यूं मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने नफ्स के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस, काउंटर वेट पैदा किया है, जैसी जो चीज रोटेट करती है, अगर उसकी एक साइड पर हमें वेट बांधना पड़ जाए या एक तरफ उसके वेट ज्यादा हो, अगर उसे हम उसी तरह रोटेट करने की कोशिश करें तो बहुत तबाहकुन वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे आमतौर पर चीजें टूट जाती हैं। उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए काउंटर वेट बांध दिया जाता, तो नतीजा ये है कि वो उसी रफ्तार से घूम तो रही होती है चीज, लेकिन वाइब्रेशन नहीं पैदा होती। ये इंजीनियरिंग का एक असूल है, उसको इंजीनियरिंग की जुबान में हम काउंटर वेट कहते हैं। आपकी गाड़ी की जो क्रैंक शाफ्ट है, कभी आप अगर उसे देखें तो उसमें बहुत से आपको यू बने हुए दिखाई देते हैं, और उनको जरा सा गौर से देखेंगे तो उनके डिफरेंट एंगल हैं। जो गाड़ी आपकी चार सिलेंडर है उस पे वो चार यूज आपको डिफरेंट एंगल से दिखाई देते हैं, और उनके अपोजिट दूसरी तरफ मोटे एंड्स दिखाई देंगे आपको, वो काउंटर वेट है उसके, उस यू के जो वेट है उसको बैलेंस किया दूसरी तरफ वेट बांध के, तो उससे वाइब्रेशन बहुत कम हो जाती है इंजन की। तो इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी साख्त के अंदर अल्लाह ताला ने जो नफ्स रखा उसका काउंटर जमीर कर दिया। इंसान अपने फायदे के लिए अपने पड़ोसी को तंग करता है, ये नफ्स है, वो फायदा हासिल करने को उकसा रहा है हमें, लेकिन जमीर हमारा फौरी तौर पर उससे रोक लेगा हमें। दर हकीकत जमीर हमें सीधी राह पे रखने में मददगार होता है, लेकिन इसको क्या किया जाए कि हम लोग अक्सर नफ्स की परवरिश करने लगते हैं और जमीर की आवाज को दबा देते हैं। इसलिए कि जमीर की आवाज पर लब्बैक कहना कुर्बानी मांगता है, और कुर्बानी बजाहिर, मैं इस चीज पर जोर दे रहा हूं कि बजाहिर घाटे का सौदा दिखाई देता है, और इंसान फितरतन घाटे का सौदा करना नहीं चाहता। तो यूं हम आमतौर पर जमीर की आवाज को दबा देते हैं। किसी नशिस्त में मैंने एक चीज का जिक्र किया था, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, दयानतदारी पर गुफ्तगू करते हुए मैंने अर्ज किया था कि दयानतदारी की दो बड़े किस्में हैं। एक फिजिकल ऑनेस्टी है। फिजिकल ऑनेस्टी तो यह है कि मैं चोरी ना करूं, मैं किसी का हक ना मारूं, मैं किसी की बगैर इजाजत कोई चीज उठा के उसकी मलकियत वो खा ना लूं, इस तरह की तमाम चीजें, ये फिजिकल ऑनेस्टी है। एक और चीज है जिसको हम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहते हैं, वो ये है कि मैं जब बात करूं हक की बात करूं, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे किसी की तौहीन हो जाए, किसी की इज्जत पर हर्फ आ जाए, किसी का कोई राज खुल जाए, किसी के खिलाफ साजिश ना करूं, किसी का बुरा ना सोचूं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। और मेरे नजदीक फिजिकल डिसऑनेस्टी इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जुर्म तो है लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो जाना। वो इसलिए कि जो शख्स इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है वो फिजिकली डिसऑनेस्ट हो ही नहीं सकता। तो यूं समझ लीजिए कि जमीर दर हकीकत इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का नाम है, कि जब हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात सोच ही नहीं सकते जो अखलाक से गिरी हो, एक सतह से गिरी हुई हो, जो जाब्ता ये अखलाक है इंसानियत का, मैं इस्लाम, सिर्फ इस्लाम को रेफर नहीं कर रहा, इंसानियत की बात करता हूं, जो इंसानियत का जाब्ता है उससे गिरी हुई बात इंसान सोच ही नहीं सके, वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। और वही जमीर है कि अंदर से लानतान शुरू हो जाए, तो जब इस हद तक जा ही नहीं सकता बंदा कि उसे सोच ही ना पाए, तो उसे अमली जामा कैसे पहनाएगा? और जब किसी बुरी सोच को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता, तो फिर वो फिजिकल डिसऑनेस्टी में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि हर फेल की इब्तदा सोच से होती है। सबसे पहली चीज है सोच, फिर इरादा और फिर अमल। तो जब सोच ही पर कदगन लग गई अंदर से, इंसान के अपने अंदर से कदगन लग गई है इस पर कि इंसान गलत चीज सोच ही नहीं सकता किसी कीमत पे, तो इरादा क्या करेगा और फिर उस पर अमल क्या होगा? जब इरादा ही नहीं कर पाया तो अमल क्या करेगा? तो यूं मैं ये अर्ज करूंगा कि जमीर की अहमियत इंसानी जिंदगी में बेपनाह है, कि यही हमें सीधे रास्ते पर रखेगा। तो जमीर की परवरिश की जानी चाहिए, इसको खिलाया पिलाया जाए। ये परवरिश पर मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ की एक छोटी सी बात याद आ गई। गालिबन मैं उस वक्त मैट्रिक में हूंगा या क्लास 9 में, तो मुझे फिरोज संस की किताबों की दुकान पर जाने की जरूरत पेश आई। कुछ किताब खरीदना थी मुझे, तो उन दिनों फिरोज संस का शोरूम सिर्फ माल रोड पर हुआ करता था। इनकी जो मेन एंट्रेंस है उसके करीब ही एक मेज पड़ी होती थी, जिस पर गालिबन बेस्ट सेलर्स या फ्रेश अराइवल्स पड़े होते थे। तो वो अंदर दाखिल होते ही आदमी खामखा में उस मेज पर रुकता जरूर था। तो वहां एक छोटी सी किताब जिस पर जिल्द थी वो दिखाई दी, तो उसको गौर से देखा तो पता ही चला, क्योंकि उसके साइज ने अट्रैक्ट किया कि इस छोटे साइज में किताब कहां से आ गई, जेबी साइज था वो। तो पता ही चला कि वो अल्लामा इकबाल की डायरी है जो पब्लिश हुई है। तो उसकी जिल्द जब उल्टी तो पहले ही सफे पर, सफे के एन दरमियान में अल्लामा इकबाल साहब की एक सेइंग थी, उनका एक कॉल लिखा था वहां। और वो कॉल बहुत अजीब था। अगर इंसान अपनी रूह की परवरिश करना चाहे तो उसे अपने जिस्म को इग्नोर करना होगा, और अगर जिस्म की परवरिश मंशा हो तो फिर रूह को इग्नोर करना होगा। तो अल्लामा इकबाल साहब ने तो बहुत ऊंची बात कही, जब इंसान अपनी रूह की परवरिश करेगा उसको पहलवान बनाएगा तो जिस्म तो कमजोर होगा, दुबला हो जाएगा। इसीलिए फकीर लोग मोटे नहीं होते, बहुत दुबले होते हैं। ये भी एक सबूत है कि मैं फकीर नहीं हूं, याद रखिए। इतना मोटा फकीर कभी होता नहीं। तो इसी तरह हमें जब हम अपने जमीर की परवरिश करेंगे तो नफ्स खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा, फिर सर नहीं उठाता नफ्स। तो यूं मैं ये अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि जमीर की अहमियत बेपनाह है इंसानी जिंदगी में। ये एक ऐसा सवाल है जो यूरोप में जहां जहां जिस यूरोप के जिस जिस मुल्क में मैं गया, इस सवाल से वास्ता जरूर पड़ा मेरा। और एक कमाल का सवाल है कि वो लोग जो इस्लाम पर एतराजात उठाते रहते हैं, वो ये सवाल बहुत कसरत से करवाते हैं। वो सवाल ये है कि یہ بھی غالباً یورپی کا کوئی ملک ہے جہاں سے ای میل آئی ہوئی ہے، یو ایس اے، امریکہ سے ہے. The night over here is a daytime in US. How they will find this night? This is better than 1,000 months. I mean, it's a fixed time. اور دوسرا سوال انہوں نے ہی پوچھا ہے کہ would you please suggest some اولاد اور وظیفہ. اگر یہ تو پرسنل چیز ہے، لیلۃ القدر کا اس میں دیکھیے ٹائمنگ کا جو کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے میں ایک بڑی مختصر اور چھوٹی سی عرض کر دوں. نماز کا ٹائم ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے سورج کے ٹائم کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز کا ٹائم یاد رکھیے کہ سورج سے منسلک ہے، وہ چاند سے منسلک نہیں. تو سورج کے ٹائم کے مطابق ہم اپنے اپنے علاقے میں نماز پڑھتے ہیں. ہر ملک میں زوال کا ٹائم مختلف ہوتا ہے، طلوع سحر کا ٹائم مختلف ہے، سو اینڈ سو فورتھ. اس پر ہمیں نہیں کوئی کرنا. روزہ ہم اپنے اپنے ملک کے وقت کے مطابق شروع کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ، اور سحر کا ٹائم ہمارے اپنے ملک کے مطابق ہوتا ہے، افطار کا ٹائم ہمارے اپنے ملک کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے. اب رمضان کے مہینے کا ڈائریکٹلی تعلق چاند سے ہے، اسلام قمری مہینوں پر مبنی کیلنڈر کو فالو کرتا، لیکن افطار و سحر کا ٹائم سورج سے منسلک ہے. عید ہم اپنے ملک کے حساب کے مطابق مناتے ہیں. یہ لیلۃ القدر جو ہے پھر وہ کیسے مختلف ہو سکتا، وہ بھی تو ہمارے اپنے قمری حساب سے ہوگی. تو وہاں اعتراض یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب لیلۃ القدر میں تو انسان کو جو کچھ عطا کیا جانا ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ، اس کی تقدیر میں امینڈمنٹس، اس کی تقدیر میں آلٹریشنز، ایڈیشنز، یہ سب آسمانوں پر ہوتی ہیں. تو آسمانوں پر یہ تھوڑی ہے کہ 3 دن تک انسان کی تقدیر کا ہی فیصلہ ہوتا رہے گا، وہ تو ایک وقت میں ہوگا. وہ کون سا وقت ہے؟ یو ایس کی لیلۃ القدر، یا جرمنی کی لیلۃ القدر، یا سعودی عربیہ کی، یا پھر پاکستان کی؟ کیونکہ ان سب جگہوں پر رات مختلف اوقات میں آئے گی. اس کا ایک بڑا آسان سا جواب ہے، یہ بالکل درست ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور جو آدمی اس رات اسے یاد کر رہا ہے اور اس کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے، پروردگار اپنی رحمتوں کے صدقے اس کے سوال کے جواب میں اس کی جھولی بھر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ سوال خلاف فطرت کاموں کے لیے نہ ہو. خلاف فطرت دعا، ایسی دعا جو خلاف فطرت کاموں کے لیے ہے، وہ قبول نہیں ہوتی. یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ایسا کوئی سوال نہ کر رہے ہوں ہم، ایسی کوئی چیز نہ مانگ رہے ہوں جو فطرت کے برعکس ہو، تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے लैलतुल कद्र में इंसान के सवाल को रद्द नहीं करता, उस रात तमाम दुआएं शर्फ कबूलियत उनको बख्श दी जाती है। और ये भी कोई इसमें शक नहीं कि आसमानों पर होता है इसका फैसला, लेकिन सवाल एक ये है कि फैसला तो आसमानों पर होता है, तो क्या यही आसमान तमाम ममालिक को नहीं ढांपे हुए? क्या तमाम ममालिक पर मोहित नहीं है यही आसमान? तो जब एक ही आसमान पर फैसला किया जा रहा है और वही आसमान सब ममालिक को ढांपे हुए है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? और क्या अल्लाह की कुर्सी तमाम कायनात पर मोहित नहीं है? तो सभी ममालिक उसकी कुर्सी के पाए के नीचे आए हैं, तो वहां क्या फिर दुश्वारी आएगी? तो जहां जहां रमजान की 27वीं रात आती है वो, या अल्लाह ताला जिस रात को ये शर्फ पक्ष है, 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं जिस रात को शर्फ बख्श दे, तो उस रात में उस मुल्क की किस्मत का फैसला हो रहा होता है। तो इसमें हमें किसी किस्म की शक और शुबा में नहीं पड़ना चाहिए कि लैलतुल कद्र सऊदी अरेबिया में तो फला दिन हो चुकी, तो हमारे यहां तो हमने जाया कर दी। ऐसा नहीं है। हमारे सर पर जो आसमान है वो उसी का हिसाब रहेगा और फैसला हमारा उसी रात को होगा जो रात हमारे मुल्क के टाइम के मुताबिक लैलतुल कद्र बनती है। तो इस वहम में ना पड़िए, आप आखिरी अशरे की ताक रातों में जागिए और इबादत कीजिए। परवरदिगार उसे कबूल फरमाने वाला है और परवरदिगार दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला जरूर दुआएं सुनेगा और आपकी हाजात को पूरा कर देगा अल्लाह। रमजान के सिलसिले में जो इन खातून ने वजीफा मांगा है, जिक्र मांगा है, नेकी के हवाले से है। अभी जब मैं आ रहा था तो मैं रेडियो पर किसी खातून ही का लेक्चर था, रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर, और तलकीन फरमा रही थी कि खवातीन जहां कहीं इकट्ठी बैठती हैं वो किसी ना किसी की बुराई जरूर करती हैं, गॉसिप को रेफर कर रही थी। तो बड़ी अच्छी तालीम दे रही थी, तो नेकी की तरफ कोई भी बुलाए, किसी लफ्जों में बुलाए, वो बड़ी अच्छी बात है। फरमा रही थी कि खवातीन को चाहिए कि रमजान में गीबत न करें। हमारे दूसरे भाई भी तलकीन करते हैं कि रमजान आ गया, इसमें हम नेकी का ख्याल रखें और किसी को अपनी जुबान और हाथ से नुकसान न पहुंचने दें। मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा इजाफा करना चाहता हूं कि पैदाइश से लेके मौत तक मुसलमान पर फर्ज है कि वो इन चीजों का ख्याल रखे, सिर्फ रमजान ही क्या, कि उसकी जुबान और उसके हाथ से न सिर्फ ये कि दूसरे मुसलमान महफूज रहें, बल्कि तमाम इंसान उसकी जुबान और उसके हाथ से उन्हें ईजा नहीं पहुंचना चाहिए। और ये तो एक मुसलसल अमल है, इंसान की भलाई का, इंसान को लुक आफ्टर करना। सिर्फ अलबत्ता ये है कि तरजीहन मुसलमान को ज्यादा लुक आफ्टर किया जाना चाहिए, तरजीहन। अगर ये हो जाए कि एक तरफ हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, गैर मुस्लिम भाई है, दूसरी तरफ एक मुसलमान भाई है, और हमारे वसायल नहीं कि दोनों को लुक आफ्टर कर सकें, तो तरजीह मुसलमान की है, पहले मुसलमान को लुक आफ्टर कर लिया जाए। लेकिन अगर वसायल इजाजत देती हैं तो फिर सभी को लुक आफ्टर किया जाना चाहिए। इसी तरह जुबान और हाथ से किसी दूसरे को ईजा ना पहुंचे। बिलअमूम तमाम इंसान और बिलखसूस मुसलमान, तो ये एहतियात तो लाजिम है हम पर, पैदाइश से लेके मौत तक पूरी उम्र एक मुसलसल अमल है। इसलिए कहते हैं कि मुसलमान की जिंदगी तो मुसलसल जहाद है। ये याद रखिए, जहाद की 10 किस्में हैं और जहाद बिल सैफ, तलवार का जहाद, या जंग कह लीजिए उसे, वो आखिरी है। पहला जहाद तो इंसान का अपना अपने नफ्स के साथ है। तो यहां से आदमी शुरू होता है जहाद करना। एक मुसलमान जहाद की इब्तिदा अपने नफ्स से करता है, तो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दर्जे, तमाम दर्जे तय करता करता आखिर पर जाकर 10वां दर्जा आता है जहाद बिल सैफ का, कि जहां वो तलवार से जहाद करता है। तो ये प्रायोरिटीज का ठीक होना बड़ा जरूरी है। जहाद बिल सैफ अव्वलीन नहीं है, अव्वलीन जहाद तो अपने ही नफ्स के खिलाफ जहाद है। तो मुसलमान सिर्फ रमजान के महीने में नहीं, बल्कि सारी उम्र नेकी का ख्याल करता है और बदी से दूर भागता है। हाँ, अलबत्ता रमजान में इसका एहतमाम और ज्यादा हो जाता है। एहतमाम तो पूरी उम्र करना चाहिए, रमजान में और ज्यादा एहतमाम कर लिया जाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह सखी थे, अल्लाह के बाद शायद सबसे बड़े सखी, लेकिन रमजान में उनकी सखावत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और बढ़ जाती थी, मजीद बढ़ जाती थी। तो सखावत के चश्मे तो उबलते ही रहते थे तमाम साल, लेकिन उसमें ज्यादा जोर आता था रमजान में, मजीद जोर आ जाता था। तो इसी तरह मुसलमान नेकी और बदी की तफरीक करता रहता है तमाम साल, तमाम उम्र, और एहतियात करता है कि वो बदी के करीब से न गुजरे और उससे सिर्फ नेकी होती रहे। ये तमाम साल का खेल है, तमाम उम्र का खेल है। लेकिन रमजान में मजीद एहतियात लाजिम हो जाती है। एक और सवाल है, गालबन लास्ट संडे रह गया था मेरी नजर से। किसी साहब ने वसवसा और इल्हाम इसके बारे में पूछा है कि क्या है। इल्हाम के बारे में तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को इल्म ट्रांसफर करने का या खबर पहुंचाने का जरिया है। इसके दर्जात भी मैंने अर्ज किए थे। वही तो नबूवत तक महदूद है, वही सिर्फ पैगंबरों पर, रसूलों पर, नबियों पर आती है, वही किसी आम आदमी पर कभी नहीं आएगी। نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہی نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا ہے وہی کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا. اب وہی کبھی کسی پر نازل نہیں ہو سکتی. تو اس کے بعد رہ جاتی ہیں وہ صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے, اولیاء اکرام کو نوازتا ہے. تو اس کی قسم میں نے عرض کی تھی کہ انسان کے دماغ میں خیال آنے لگتے ہیں, بیٹھے بٹھائے ایک خیال آئے گا کہ شاید فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو باہر دیکھیے اٹھ کے تو واقعی صاحب تشریف لا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی ابتدائی شکل ہے, اس کو القا کہتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے دل میں اور دماغ میں سوائے رب تعالیٰ کی اور اس کی قدرت کی اور کچھ نہیں بستا, تو وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں. اس مقام پر پہنچنے کے بعد ان پر یہ القا کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اس کے اگلا مقام ایک آتا ہے کہ انسان کو خواب میں رب تعالیٰ دکھانے لگتا ہے, گزری ہوئی باتیں اور پیش آنے والی باتیں, لوگوں کے احوال خواب کے ذریعے اسے معلوم ہونے لگتے ہیں. یہ عالم رویا ہے. تو یہ انسان کو خبر ملتی ہے. اس سے اگلی چیز ہے کہ اسے کشف حاصل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کشف دو طرح کا ہے, ایک تو بیٹھے بٹھائے کبھی بھی کشف جاری ہو جائے کسی پر, یہ عام طور پر اولیاء اکرام کو ملتا ہے. کچھ اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ انعام مزید عطا فرماتا ہے تو ایسا کشف حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جب چاہے حالت کشف میں داخل ہو جائیں, لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں. پھر بے شمار قسمیں ہیں کشف کی, یہ ہماری اس موضوع پہ بات ہو چکی پہلے کئی بار. اس سے اگلی چیز ہے الہام. ہم محاورتن بھی بولتے ہیں کیا تمہیں الہام ہوا ہے, یہ اس سے اگلی چیز ہے. اس کے مقابلے پر وسوسہ ایسی چیز ہے جو اس کا تعلق شیطان سے بھی ہے, اس کا تعلق ہمارے نفس سے بھی ہے. ہوتا یوں ہے کہ ایک آدمی جس کو اپنے نفس پر کوئی قابو نہیں ہے, موزور ہو گیا ہے اس کا نفس, اسے کشف تو حاصل ہے لیکن کسی وقت بے قابو ہو گیا اس کا نفس, کنٹرول سے نکل گیا انسان. تو پھر شیطان کچھ چیزوں کو دکھا دیتا ہے یا دل میں خیال آنے لگتے ہیں القا کے ذریعے سے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے الہام ہو رہا ہے, مجھے اللہ دکھا رہا ہے. درحقیقت وہ نفس اس کا اس کو وہ تماشا دکھا رہا ہوتا ہے, اس کی خواہشات ہیں جو اس کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو جب انسان کو اپنی خواہشات کے بارے میں یوں دکھائی دینے لگے اور وہ اسے کشف سے القا سے اور الہام سے धोखा खाने लगे कि शायद मुझे उसके जरिए इंफॉर्मेशन मिल रही है, दर हकीकत वो उसके अपने नफ्स के ख्वाहिशात हों, तो वो वसवसा कहलाएगा। और ये वसवसा जारी रहता है, ये किसी स्टेज पर जान नहीं छोड़ता, इसके लिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है। अगर आप हालत कश्म में गए तो फिर कुछ इस तरह से उस डूबना पड़ता है कि नफ्स से आपका ताल्लुक टूट जाए, अब वो प्रैक्टिस से आ जाती है चीज कि इंसान अपने नफ्स से नाता तोड़ लेता है, तो फिर से ही मालूमात मिलती है, वरना नफ्स तमाशे दिखाने लगता है और इंसान ये धोखा खाता है कि शायद मैंने ये हालत कश्म में देखा, दर हकीकत वो वसवसा होता है। तो वो इत्तलात जो नफ्स पर मबनी है या नफ्स की ख्वाहिशात में मबनी है वो वसवसा है, और जो रब की तरफ से दिखाया गया है वो इल्हाम है, कश्फ है, अलका है। ये दोनों में फर्क है। किसी के कोई सवाल है तो फरमाइए।
लाल मिश्रा साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
मिश्रा साहब, आपने अपने सेमिनार के एंड में ज़र्बे मोमिन का जिक्र किया था, तो उसको एलैबोरेट नहीं किया आपने।
एक बड़ी इसकी सादा तारीफ हो सकती है कि जो मर्द मुसलमान मर्द मोमिन हो गया और फिर उसने किसी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए कोई मैयर लिया, कोई कदम उठाया, वो ज़र्ब मोमिन। और ज़र्ब मोमिन में गलती का एहतमाल नहीं होता, इसलिए कि मोमिन रब की फरासत के जरिए से देख रहा होता है। तो जो मैंने उस दिन जिक्र किया था कि अब हालात इस जगह आ गए हैं कि शायद मर्द मोमिन की नहीं ज़र्ब मोमिन की जरूरत रहेगी, उससे मेरी मुराद ये थी कि अब ना तो शख्सियात से काम चलेगा, ना ख्वाहिशात से काम चलेगा। अब काम अगर संवर सकता है तो काम संवरेगा सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे अमल से, और वो सच्चा अमल ज़र्ब मोमिन से मैंने उसे ताबीर किया था। और
कशिफ और इल्हाम में बुनियादी फर्क,
अंग्रेजी की ग्रामर में जैसे तीन डिग्रीज हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, अल्फाज लफ्ज एक ही है, फर्क डिग्री का है। तो इसी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन के किसी नेक और मोमिन इंसान तक पहुंचने के जराए जरिया एक ही है, ये डिग्रीज का फर्क है। जैसे मैंने ये मिसाल दी कि अंग्रेजी ग्रामर में, तो ये डिपेंड करता है कि कोई शख्स रूहानी लताफत के किस मकाम पर है। जितने बुलंद मकाम पर होगा रूहानियत के, वो उसे इंफॉर्मेशन का जरिया उतना ही क्लियर मिलेगा। معاملہ صرف ڈگری کا ہے، لیکن یہ چاروں کے چاروں ذرائع اطلاع ہی کے ہیں.
شاہ صاحب، یہ چاند اور سورج جو ہے نا
جی،
کچھ پین میں جیسے آپ نے بتایا کہ روزہ اور قطب شمالی قطب جنوبی مراد دن کے، اس میں تو یہ چاند اور سورج کا جو دخل ہے وہ کس حد تک اسے شریعت کے لیے لایا جا سکتا ہے، خاص طور پر نمازوں کے روزے کا اوقات کے لیے؟ شکریہ.
دیکھیے، قطب شمالی اور قطب جنوبی پہ نمازوں کے اوقات اجتہاد کے ذریعے یوں مقرر کیے گئے ہیں کہ ایک اندازہ کر لیا گیا، جس طرح سے زمین پر فرضی خطوط ڈرا ہم نے کیے ہیں اور ہر خط کا درمیانی فاصلہ 64 میل کا ہے، اور ایک خط سے دوسرے خط پہ کے درمیان 4 منٹ کا فرق پڑتا ہے. یہ جہازوں کی نیویگیشن میں، ہوائی جہاز اور بحری جہاز ان کی نیویگیشن میں یہ استعمال کیا جاتا ہے، ان خطوط کا، لیٹیچیوڈ اینڈ لانگیچیوڈس. اردو میں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کا، ہاں، طول البرد اور بلد اور ارض البلد، یس. یہ لانگیچیوڈز اینڈ لیٹیچیوڈز، دو لیٹیچیوڈز کے درمیان 4 منٹ کا فرق ہے، تو اس سے پھر اجتہاد کے ذریعے مسلمانوں نے یہ ورک آؤٹ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو بینچ مارک مانا، اور اس سے آگے پھر کیلکولیٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ ممالک جو قطب شمالی پر ہیں یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو قطب شمالی کے بالکل پاس ہیں، ان کے لیے پھر نمازوں کے ٹائم ورک آؤٹ کیے. اسی طرح سحر و افطار کا ٹائم اس طرح سے کیلکولیٹ کیا ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجتہاد ہے، اس بات پر یہ اجماع ہوا، اور اس کے نتیجے میں ٹائم مقرر کر لیے گئے تھے. میں نے یہاں کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ شریعت کی بنیاد 4 بنیادی اصولوں پر ہے. اس میں اجتہاد چوتھا ستون ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آتا ہے جس کے بارے میں قرآن، حدیث، سنت یہ خاموش ہے یا اس کی مثال نہیں اس پہ ہمیں ملتی، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اجتہاد کر لیا جائے، اور اجتہاد کر کے، اور اجتہاد کی بنیادی شرائط بھی ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو مستند عالم ہیں، اس میں شرط مستند کی ہے، جن کے بارے میں کوئی شک نہ ہو کسی کو، اور اجتماعی طور پر اس پر کنسنسس ہو کے یہ صحیح عالم ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اکٹھے بیٹھ کر پھر بیسڈ آن لاجک اس کا ایک حل نکالیں، تو مسلمان اگر اس پر عمل کریں تو وہ جائز ہوگا. تو یہ اجتہاد کے ذریعے سے یہ ٹائم ورک آؤٹ کیا تھا، اور اس میں اس کی بنیاد انہوں نے ٹائم سکیل کو بنائی تھی جو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پر بیسڈ ہے.